ओम शांति। ताज तख्त और तिलक की अमर जागीर दी। बाबा ने कहा, तुम बच्चे मात पिता का दिल जीतते हो, तख्त जीतते हो, और जो जीतते हैं वो क्या बनते हैं? आवाज आ रही है? वो भविष्य तख्त के अधिकारी बनते हैं, ताज तख्त तिलक के अधिकारी बनते हैं। मेहनत है, लेकिन ज्ञान तो सहज है, योग में मेहनत है। तो ज्ञान का एक एक बिंदु जो है वो मन को जैसे डांस करना सिखाता है। हर व्यक्ति को डांस अच्छा लगता है ना, तो आज हम भी ज्ञान डांस करेंगे। रूहानी डांस, ज्ञान डांस, ये ज्ञान डांस का मौसम है। ये जैसे हर मौसम को लेकर हम अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, जब जब मौसम परिवर्तन होता है तो हम अपनी व्यवस्थाओं को भी परिवर्तन कर देते हैं। बरसात आती है तो उसी तरह से छतरी निकाल देंगे, रेनकोट निकाल देंगे, जूते बरसात वाले पहनेंगे, चप्पल वैसे पहनेंगे। और गर्मी का मौसम आता है तो कूलर की व्यवस्था करते हैं, पंखे की व्यवस्था करते हैं, एसी की व्यवस्था करते हैं। और सर्दियों की मौसम में उस समय एसी चलाएंगे, उस समय रूम हीटर की ज़रूरत पड़ती है। रजाई निकाल देंगे, कंबल निकाल देंगे। तो ऐसे ही मुरली में भी ऐसे होता है, एक ही मुरली में अलग अलग के विषयों पर पॉइंट होते हैं। जैसे आज सुनाया ना, मम्मा की विशेषताएं, तीन विशेषताएं। जो पहले दिन की विशेषताएं थी कि मम्मा मुरली की मस्तानी थी, एक एक शब्द को, एक एक महावाक्य के ऊपर बाबा मम्मा बहुत ध्यान देती थी, बाबा के महावाक्यों पर, और उनका विस्तार करती थी बहुत बारीकी से, समझाने के लिए उनके गहराई में जाती थी। और दूसरे पॉइंट में बताया था कि साक्षी दृष्टा, हर एक पार्ट को बाबा मम्मा साक्षी होकर देखती थी। अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो भी कोई अवस्था में फर्क नहीं, है ना। और आज था बेफिक्र। तो ऐसे जो साकार मूल्यां होती हैं या अव्यक्त मूल्यां होती हैं, सबका अपना अपना महत्व है। जैसे आज बाबा ने एक सेंटेंस कहा, दिन प्रतिदिन तुम्हारे में डैश बढ़ती जाती है, क्या ताकत, दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत बढ़ती जाती है। तो ताकत किस चीज से बढ़ती है? बिना खाए पिए तो बढ़ेगी नहीं ताकत। कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, भोजन भी वैसा शक्तिशाली करना पड़ता है तो ताकत बढ़ती है। परहेज भी रखना पड़ता है, अगर हम खाएं पिए ही नहीं तो ताकत कहाँ से बढ़ेगी? शरीर कमजोर हो जाएगा, चल फिर नहीं सकेंगे, अनेक प्रकार की बीमारियां लगेंगी। ऐसे ही बाबा हम सब आत्माओं को रोज शक्तिशाली खुराक खिलाते हैं ताकि आत्मा बहुत ताकतवर शक्तिशाली बन सके। तो मुरली जैसे एक माजून का काम करती है, है ना, जो एक मूर्छित अवस्था में सोई हुई आत्मा उसको सुरजित कर देती है। तो अगर हम ताकत अपनी बढ़ाने के लिए भोजन करेंगे नहीं तो जीवन में बदलाव कैसे आएगा? तो कैसे बाबा अलग अलग तरीके से हम आत्माओं को रोचक तरीके से ज्ञान देते हैं ताकि एक नवीनता बनी रहे। एक ही चीज को अगर डेली आलू खाते रहें तो आदमी बोर हो जाएगा, लेकिन उसी आलू की अनेकों वैरायटियां बनाई जा सकती हैं। उसी तरह से बाबा का ज्ञान तो वही, अगर सार में देखा जाए तो मन मना बाबा माँ में कम याद करो, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि अगर एक ही हम मंत्र पकड़ के बैठ जाएंगे तो सारे दिन में मन मनाभाव नहीं हुआ जा सकता। इसलिए कर्म क्षेत्र पर कुछ अलग बातें बाबा बताते हैं। पढ़ाई के समय कुछ अलग सोमान होता है, योग के समय कुछ अलग सोमान होता है। तो नए नए तरीके से बाबा साकार वाणियों के माध्यम से, अव्यक्त वाणियों के माध्यम से हमारे में जैसे ताकत भर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। जितना हम इस ज्ञान को अर्जित करते हैं, इसका अर्जन करते हैं, इसके ऊपर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम पहले वाले नहीं रहते। जो अवस्था पहले कमजोर थी, किसी ने थोड़ा कुछ बोला तो मन जैसे उदास हो जाता था, दिल में ठेस लगती थी, दिल घायल हो जाता था, किसी ने थोड़ा भी कुछ बोला तो फीलिंग आ जाती थी, अपमान फीलिंग होता था, ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि उस दिल में, उस मन में अब इतनी शक्तिशाली इंजेक्शन लगा दी भगवान ने कि बाहरी वायरस का कोई असर नहीं होना अभी उसके ऊपर। तो बाबा हम सबको दिन प्रतिदिन ताकतवर बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। एक एक वाक्य पर बाबा कहते चिंतन करो। जैसे आज भी दोपहर को क्लास होना, मनन करना, संडे की, बीते हुए संडे की मुरली, मनन शक्ति से ही कौन सी अवस्था होगी, मग्न अवस्था। तो मग्न अवस्था के लिए मनन बहुत जरूरी है, और मनन के लिए आदत लंबे समय का अभ्यास करने के बाद ही पड़ती है, तुरंत नहीं पड़ती है। क्योंकि मन स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि इस मनन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा समय देना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से किनारा करना पड़ता है, कुछ संबंधों से भी किनारा करना पड़ता है, और कोई कोई से तो हमको बुरा भी बनना पड़ता है। अगर किसी दोस्त ने हमको कह दिया कि हमको थोड़ा ये सहयोग दो या योग के टाइम चलो थोड़ा घूमने, और हमने मना कर दिया तो बुरा तो बन गया ना। ऐसे ज्ञान में जब आते हैं तो सबका अनुभव होगा, जिन जिन के साथ हम सब की दोस्ती थी, और जब ज्ञान मिल गया तो वही दोस्त जैसे हमको दुश्मन तो नहीं लगे, लेकिन फिर भी जैसे ज्ञान के लिए बाधक, अगर हम उनका उसी तरीके से सहयोग दें, क्योंकि हमारी अभी दिशा बदल गई है ना। दुश्मन की बात ही तो कल की मुरली में एक दुश्मन शब्द आया था, किससे संदर्भित, हाँ ये पांच तत्वों जैसे दुश्मन हो गए हैं। पहले सतो प्रधान थे, अब ये तमो प्रधान दुश्मन हो गए हैं। अर्थ की होगी, नेचुरल कैलामिटीज आएगी, बाढ़ आएगी, है जी, धरती कंपेगी, अर्थविक डैम फूटेंगे, तो ये सब जैसे दुश्मन हो गए। और इनको दुश्मन बनाने वाला कौन है, हम स्वयं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं की जिम्मेवारी समझो, जवाबदारी। जब जवाबदारी समझेंगे तो क्या होगा, हाँ आज का प्रधान, वृत्ति चंचल नहीं होगी, और वृत्ति चंचल नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वाइब्रेशन सतो प्रदान वायुमंडल बना सकेंगे, है ना। और वृत्ति चंचल होती है तो क्या करना है, सर्व संबंधों के बंधन में बांध दो वृत्ति को। बाबा ने कहा ना, अगर कोई कोई बच्चे चंचल होते हैं तो उनको जैसे रस्से से बांध देते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर ज्ञान योग करने के में अपने को बिजी रखने के बाद भी वृत्ति चंचल होती है तो ईश्वरीय संबंधों में, सर्व संबंधों में मन वृत्ति को बांध दो, तो वृत्ति चंचल नहीं होगी। अगर वृत्ति को चंचल करना है अर्थात दौड़ाना है, घूमती इधर उधर, तो उसको ज्ञान युग में घुमाना, ज्ञान युग में घुमा दो उसको, कहीं एक्सरसाइज करनी है, डांस करना। ज्ञान डांस क्या चीज है, अनेक पॉइंट पर चिंतन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, और अंत में ऐसी अवस्था आती है कि मन एक ही बिंदु पर ठहर जाता है, क्योंकि रस मिलने लगता है उसको, अतीन्द्रिय सुख की भासना आने लगती है, जैसे अंदर में गुदगुदी होती है, और अतीन्द्रिय सुख को बयान करना मुश्किल होता है, वो शब्दों से बयान नहीं होता, उसकी कोई भाषा नहीं है, वो तो हमारे फेस से, चेहरे से दिखाई देगा, है ना। जैसे हमको एक बहन जी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि मुरली का जो टोटल सार होता है ना, पांच बातों में होता है, अगर वो हमारे जीवन में उसको हम अच्छी तरह से ग्रहण कर रहे हैं तो। एक है मुरली सुनते सुनते हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, सोल कॉन्शियस स्थिति। सारी मुरली के बीच में अगर देखेंगे तो इसके ऊपर बाबा जैसे ज्यादा फोकस करते हैं, सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। तो सोल कॉन्शियस स्थिति ऊपर हमको, उसके ऊपर हम स्थित हो जाते हैं। दूसरी बात है वो हमारे फेस में स्माइलिंग स्माइल लेके आती है। अच्छे अच्छे पॉइंट, जब ताकतवर भोजन मिलता है तो फेस पर स्माइलिंग आती है। तीसरी बात है वो मुरली हमको स्वीट बनाती है। हमारे अंदर जो कड़वापन भरा हुआ है, अनेक प्रकार के विषय विकारों के जो जहर भरे हुए थे, तो वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो हम स्वीट बन रहे हैं जैसे धीरे धीरे, तो स्वीट बनते जाते हैं। चौथी बात है वो हमको सरेंडर होना सिखाती है भगवान के आगे। जो भगवान ने कहा सत्य वचन महाराज, कैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं? पहले तुम पत्थर बुद्धि थे, अब तुम विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो। तो पत्थर बुद्धि बोला सत्य वचन महाराज, सुन लिया ना हमने, क्योंकि हम थे तो हम सरेंडर हो गए उसके सामने। हमने क्या क्यों का प्रश्न नहीं किया, क्योंकि रियलाइज कर लिया हमने। तो जैसे मुरली हमको सरेंडर करना सिखाती है, भले हम कहीं भी हैं मन से समर्पण होना सिखाती है, और लास्ट में सेटिस्फेक्शन संतुष्ट करना सिखाती है। तो ये मुरली की मुख्य पांच बातें, ये तो वो बहनजी का चिंतन था, कितना अच्छा चिंतन। ऐसे हम भी निकालें कि मुरली से क्या क्या फायदे होते हैं। देखें जब से हम इस मार्ग में आए हैं, बाबा ने हम सबको एडॉप्ट किया है, तो हमारे जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन आया है, उस मुरली से क्या जादू हुआ हमारे जीवन में, कितना ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठा जो हमको पहले इस ज्ञान का कभी मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान अभी हमारी बुद्धि में छलकता रहता है, टपकता रहता है। तो बाबा की हमारे पर कृपा बनी है ना, माना जैसे हम मुरली को जितने प्यार से सुनते हैं, जैसे आज बताया ना मम्मा मस्तानी थी, साकार अव्यक्त वाणी के एक एक महावाक्य को बड़े प्यार से सुनती थी, तो ये लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद ये मुरली में प्यार छलकने लगता है, तुरंत नहीं छलकता है। लंबे समय तक तो मुरली समझ में भी नहीं आती है, कितने सालों तक समझ में भी नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी ज्ञान की उम्र बढ़ती जाती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो मुरली के अनेक राज स्वतः स्पष्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमारी बुद्धि को स्वच्छ करता जाता है, स्वच्छ करता जाता है। बाबा ने आज बताया ना कि मैं हूं कौन, स्वच्छ करने के लिए बताया एक पॉइंट आज, वो मिंटो कर्जन के आगे था वो पॉइंट, टाइटल है बाबा का एक, मैं तुम्हें स्वच्छ करने आया, मैं हूं धोबी। तो बाबा सटका मार रहा है हमारी, हमारे को रोज सटका मार रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं ना, है ना। साफ कपड़े पहनना कितने अच्छे लगते हैं, चमकते हैं ना, देखो चमक रहे हैं, और मैले कपड़े हो तो आत्मा भी स्वच्छ कर रहा है बाबा, चमक रही है एकदम, आत्मा चमक रही है, वो हमारे चलन से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। अगर नहीं है तो बाबा ने उस दिन कहा ना कि किसी के पास अगर थोड़ा हुआ तो वो उसमें संतुष्ट रहेगा, और किसी के पास करोड़ों है वो उसमें भी रोना रोते रहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ज्ञान ऐसी चीज है जो हमको संतुष्ट रहना सिखाता है। तो बाबा धोबी है, कैसे अलग अलग टाइटल से बाबा हम सबको समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाए, किसी ना किसी तरीके से बुद्धि में ज्ञान बैठना शुरू हो जाए, किसी ना किसी तरीके से बुद्धि रूपी पात्र स्वच्छ हो जाए, इसमें अमृत ठहरना शुरू हो जाए, विष इससे बाहर निकल जाए। तो कितने प्रयास करते हैं बाबा, तो यही सारा ज्ञान डांस ही है। ये मन बुद्धि को दौड़ाना है, दौड़ाओ, परसों की मूल्य में था ना, दौड़ाओ बुद्धि को दौड़ाओ। तो अनेक प्रकार के पॉइंट है, उनको दिन में बार बार दोहराते रहे, क्योंकि बाबा ने आज कहा तुम हो, अगर तुम अपने को ये समझो तो अहो सौभाग्य हो, क्या आय की मुरली में था, अगर तुम अपने को ये समझो तो अहो सौभाग्य है, कुछ दूसरा, हाँ दूसरा बोला, लेकिन वो पहले ही बहुत बार बोला हुआ है, क्या समझो गॉडली स्टूडेंट, तो दो बार ही जिक्र किया बाबा ने, एक बार जिक्र किया पहले कि हमेशा समझो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, है ना, हम बाप से पढ़ रहे हैं, हम हैं गोली स्टूडेंट। और कुछ लाइनों के बाद बाबा ने कहा, हमेशा अपने को ये समझो मैं गोली स्टूडेंट हूँ, तो ये भी और सौभाग्य। कितना सुंदर है, एकदम दिल को छू लेने वाला पॉइंट है। और स्टूडेंट क्या, एनर्जी में रहता है वो हमेशा। स्टूडेंट छोटी मोटी बातों में नहीं जाता, अपना समय वेस्ट नहीं करता है वो। तो हम गोल्डी स्टूडेंट हैं, जवाबदारी कितनी बड़ी दी बाबा ने आज, है ना, पूरी सृष्टि को सतो प्रधान बनाना है, छोटा मोटा काम तो नहीं है। कितनी हमारे पर अपेक्षा है, लेकिन हम अपेक्षा, दूसरी दूसरी अपेक्षाओं से अपने मन को बांध के रखा हुआ है। कल था ना स्लोगन, मान शान की इच्छा रखना क्या होता है इसे, अर्थात भविष्य में अपने ऊंच पद को गवा देना। तो मान शान कौन सा रखना है, शान रखनी ज्ञान की शान रखनी है। स्वयं भगवान हमको मान दे रहा है, तो मनुष्य के मान क्या चीज है, वो तो पाई पैसे का नहीं है। बाबा ने कहा आज तुमको मैं कौड़ी से हीरा बनाने के लिए, मुरली की लास्ट लाइन, मैं तुमको कौड़ी से हीरा बनाने के लिए आया हूं। तो भगवान हम सबको इतना ऊंचा टाइटल दे रहा है, वो स्वयं मान सम्मान दे रहा है। तुम मेरे नैनों के नूर हो, सिर के ताज हो, तुम माता पिता के दिल को जीत लेते हो, कितनी बड़ी बात है। भविष्य का राज्य तख्त, गीत में सुना ना, ताज तख्त की, ताज तख्त और तिलक की अमर जागीर देने के लिए आया वो बाबा। कितनी बड़ी जागीर है वो, भगवान अपना तख्त स्वयं ऑफर कर रहा है हमको कि मेरे तख्त पर बैठो। लेकिन बैठने के लिए कुछ शर्तें भी तो है, कंडीशन भी तो होगी ना, क्योंकि साधारण तख्त थोड़ा नहीं, मनुष्य का तख्त थोड़ा नहीं है कुछ, वो बिल्कुल प्योर तख्त है। कल की मुरली में था, तुम कंप्लीट डैश बनो, क्या क्या बनो, उसके पहले कंप्लीट प्योर बनो। तो इस पर चिंतन करने का विषय है कि क्यों क्यों कंप्लीट प्योर बनो, क्योंकि वो कंप्लीट प्योर है वो, उसका प्यार अगर अनुभव करना है तो उसके जैसा बनना पड़ेगा। संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, बार बार अपने को, अपने शरीर को भूलते जाओ, देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, क्योंकि तुम्हें अब वापस जाना है, क्योंकि तुम्हें अभी बाप के साथ उड़ना है। ये था मुख्य पॉइंट, बाप के साथ अगर उड़ना है तो कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, बार बार अशरीरी बनो, देही अवानी बनो, क्योंकि वापस जाना भी, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, अनेक प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, साधने हैं, संस्कार हैं, चिपके हुए उसे। तो उन बाबा हम सबको उड़ने के लिए पंख दे रहा है। तो ऐसे अगर हम ज्ञान का रमण करते रहे, जैसे आत्मा ज्ञान डांस कर रही है, तो दूसरी बातों को चिंतन करने के लिए टाइम नहीं होगा, अगर हमको ये आदत पड़ गई तो। इसलिए संडे की मुरली में इतना चलते फिरते भी मनन करने की आदत डालनी है। तो हम तो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब ऐसा समय आएगा कि निरंतर हमारा चिंतन चलते फिरते भी सहज हो जाए। ये तो फिर भी थोड़ा ठहर के करना पड़ता है चिंतन, लेकिन चलते फिरते भी एक नेचुरल चिंतन की धारा, ज्ञान की धारा बहती रहे, वो हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। था उस दिन भी कि भगवान के महावाक्य और हमारे मुख से निकलने वाले बोल दोनों इक्वल हो जाएं, तो हम सोचेंगे कि हमारा चिंतन अभी निरंतर उसके जैसा है, मनन चिंतन निरंतर हो रहा है, तो मग्न अवस्था होगी, नहीं तो मग्न अवस्था होगी नहीं। खाली हमने मुरली सुन ली, एक बार सुन लिया, वो कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता उसे, एक दो पॉइंट बुद्धि में रहेंगे लेकिन खिसक जाते हैं वो, बड़ा खिसकना ज्ञान है ये, अभ्यास है ये, लंबे समय से अभ्यास। मुख्य इस ज्ञान में अभ्यास ही चाहिए। जैसे किसी घोड़े को कंट्रोल में करना है तो क्या, अगर नए व्यक्ति को कहा जाए इस घोड़े को कंट्रोल करो और उसको घोड़े के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है तो क्या करेगा, कंट्रोल कर पाएगा उसको नहीं। लंबे समय तक उसकी, उसको पहले घोड़े के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको कुछ घास खिलाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने ऊपर हाथ फेरने देगा, नहीं तो घोड़ा पास ही नहीं आने देगा वो। फिर जब वो उसकी सवारी करेगा तो हो सकता दो चार बार गिरा भी दे वो, तो उसको अभ्यास ही नहीं है, सीखना पड़ेगा। और जब एक बार उसने घोड़े पर बैठना सीख लिया, दौड़ाना सीख लिया तो आंखें बंद करके घोड़ा उसके वश में हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास हो गया पक्का उसका। कोई भी बात में अभ्यास चाहिए, इसलिए सुनना भी एक अभ्यास है, सुनना भी एक बहुत बड़ी साधना है। केवल मुरली सुनना एकाग्रता पूर्वक, वो भी एक बहुत बड़ी साधना है। अभ्यास 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 योग में हम क्या करते हैं, इसलिए अभ्यास राजयोग का अभ्यास, जहां भी हम किसी को अगर बाबा का परिचय देते हैं तो पूछते हैं लोग यहां क्या कराते हैं, राजयोग का अभ्यास कराते हैं। तो अभ्यास तो हमारा अंतिम श्वास तक चलता रहेगा ये, और जितना हम इस अभ्यास में परिपक्व होते जाएंगे अभ्यास में, तो हमारी अवस्था भी परिपक्व होती जाएगी, कोई भी परिस्थिति हमको हलचल में नहीं लाएगी, गिराएगी नहीं। इसलिए अभ्यास चाहिए, बिना अभ्यास के नहीं। इसलिए कहते ना, कर्त कर्त अभ्यास के जड़ मति हो तुझ जान। तो इतना ऊंचा ज्ञान है, इस ज्ञान को बुद्धि में बिठाने के लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तो बुद्धि में ताकत बढ़ती जाएगी। आत्मा जैसे ज्ञान डांस करते, ज्ञान डांस का मौसम है, तीव्र पुरुषार्थ का मौसम है, उड़ने का मौसम है, आत्मा को नए पंख लगाने का मौसम है, उमंग उत्साह में रहने का मौसम है। तो अपने चिंतन को बढ़ाना है, बुद्धि को प्रखर करना है, और वो हमको स्वयं ही करना है। कोई भी मुरली ले लो, डेली मुरली भी होती है, अनेक प्रकार की मुरलियां, इतने गहरे गहरे जो आत्मा को जख्मी कर दे महाबाके, ऐसी मुरली पढ़नी है, अव्यक्त वाणी। जैसे बाबा ने कहा, अगर किसी भी देहधारी को देखते हो जैसे सांप को देखते हो, कितना खतरनाक पॉइंट है ये। अब आत्मा दिखाई तो देती नहीं है, दिखाई तो दे ही देगी, लेकिन देह को देख के वृत्ति हमारी चंचल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हमने वो किया तो हमारी ड्यूटी कहाँ, मुक्तिधाम में, शमशान घाट है ना। तो महाबाक्य हमको जैसे अंदर से जख्मी जख्मी तीर लगना चाहिए, जैसे अंदर से खून निकलना चाहिए, बार कांटा लगता तो कितनी फिर, एक बार जिस रास्ते से हमको कांटा लग गया उस रास्ते से हम कितनी फिर सजगता से चलते हैं, अलर्ट होके चलते हैं। इस मार्ग पर भी हमको पल पल अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे हम अलवेलेपन में आते हैं तो हमारा पुरुषार्थ चौपट होने लगता है। और बाबा ने आज कहा स्लोगन में, क्या कहा स्लोगन में अलवेलेपन के बारे में, हाँ जी, हाँ, अलवेलेपन से बचने का साधन है बेहद का वैराग्य। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते लंबे समय से मान लो हमारी अवस्था परिपक्व होती हुई जा रही है, बहुत बातों से हम विघ्न मुक्त हो गए हैं, निर्विघ्न बने हैं, उसके बाद भी मन कहीं ना कहीं साइड सीन में जा सकता है, क्योंकि पुराने संस्कार बहुत गहरे बैठे हुए हैं। हम केवल ऊपर ऊपर से चीज को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ड्रम है, अब एक ड्रम में है, हम तो उसके ऊपर ऊपर चीज को देख रहे हैं ना, नीचे उसके तले में क्या, वो तो हमने देखा ही नहीं है। ऐसे ही आत्मा के अंदर कौन से जन्म के कौन से संस्कार अंदर में बैठे हैं, वो थोड़ा हमको तुरंत पता चल पा रहा है। हम तो केवल पहले इसी जन्म के संस्कारों का सामना नहीं कर पा रहे, तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार कितने होंगे। और अभी ही हम अपने उन जो ऐसे संस्कार है जो हमको कुंठित करते हैं, दुखी करते हैं, उनको खत्म करने के बजाय और ही नए संस्कार बना रहे हैं, जो संस्कार ज्ञान के लिए बाधक हैं, जो संस्कार हमारी तपस्या को भंग करने वाले हैं, जो संस्कार हमको योग में रुचि पैदा नहीं करने देते हैं, जो संस्कार हमको साधनों की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जो संस्कार हमको कुसंग के प्रति ले जा रहे हैं, जो संस्कार हमको अच्छी अच्छी बातें जो बुरी हैं लेकिन अच्छी अच्छी बातें सुनने का रस बैठ रहा कानों से, तो आकर्षित कर रहे हैं, तो कितने गहरे बैठे होंगे वो संस्कार, तो कितना काम करना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा चिंता नहीं करने की, माया आएगी, तूफान आएंगे, लेकिन ये कौन सा मैदान है, बॉक्सिंग, कल के मोहल्ले में था, बॉक्सिंग है, माया थप्पड़ मारेगी, जोर से तूफान आएंगे माया की। ऐसे थोड़ा नहीं है कि हमको कोई मारता रहे और हम सामने वाले को हम मारते रहे वो चुपचाप सहता रहेगा, ऐसे थोड़ा होगा कोई। अगर हम पांच मारेंगे तो एक आधे तो मारेंगे ना वो भी, तो ऐसा नहीं कि माया नहीं आएगी, माया तो आएगी, लेकिन हमारे सामने हमारे पास में अस्त्र शस्त्र ऐसे होने चाहिए। अगर मान लो कोई भी एक संकल्प खराब संकल्प आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए फिर, क्या करना चाहिए, हाँ जी, बाप को दे देना चाहिए संकल्प, बाबा भस्म कर दो, तो हम क्या कर रहे हैं फिर? खुद ही करेगा? नहीं, उसने हमको बता दिया कि तुमको खत्म करना है। बोलेगा मैंने थोड़ा विकर्म किया, विकर्म तो तुमने किया है, और विधि खत्म करने का तरीका मैंने बताया। हाँ, तो वो संस्कार बनाने हैं। मान लो अगर व्यर्थ संकल्प एक आता है कोई हमको, तो 10 संकल्प हमारे से पहले पॉजिटिव शक्तिशाली समर्थ होने चाहिए। कोई खराब संकल्प आ रहा है मान लो, तो सोच लो उस इसमें मैं शुद्ध आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, परमात्मा की छत्र छाया में हूं, उसकी शक्तियां मेरे ऊपर आ रही है, मैं जैसे एकदम सोल वर्ल्ड में पहुंच गया हूं, जैसे एनर्जी वर्ल्ड में पहुंच गया हूं। नए नए संकल्प क्रिएट करने हैं, वो लिखने हैं, क्योंकि उसमें बुद्धि काम नहीं करती है, पहले से मटेरियल तैयार चाहिए। दुश्मन हमारे सामने खड़ा हो गया आकर, और हमने पहले से सामग्री हथियार असला है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे? तो भगवान के खजाने को अपना खजाना बना के रखना है, समय पर, ताकि उसका सदुपयोग कर सकें। है तो सही हमारे पास, लेकिन समय पर काम में नहीं आ रहा है। उसने तो सारा कुछ दे दिया है। बाबा ने कहा ना, जन्मते ही मैं तुमको सब खजानों का मालिक बना दिया। भगवान ही भाग्य विदाता ही तुम्हारा हो गया है। पिछले से पिछले संडे में मुरली में था ना, भाग्य विदाता संबंधित कौन सा एक सेंटेंस दोहराया था वहां उस मेडिटेशन में, कौन सा? स्वयं भाग्य विदाता तुम्हारा भाग्य का निर्माण कर रहा है, तो किसी मनुष्य की ताकत नहीं जो तुम्हारा भाग्य छीन सके। कितनी बड़ी बात है। तो स्वयं वो भाग्य का निर्माण कर रहा है, लेकिन उसके साथ हम कितने मददगार हैं, भगवान के कार्य में मददगार है, है ना? जैसे बताया एक बार, वेदांती बहन जी विदेश में जा रहे थे हवाई यात्रा में, तो साथ में कोई एक गेस्ट बैठे हुए थे, तो बिजनेस क्लास में, तो उन्होंने पूछा आप इस सफेद कपड़ों वाले करते क्या आपको? तो बोला हम भगवान को मदद करते। वो सुन के चुप हो गए। बोला भगवान सबको मदद करता और ये भगवान को मदद करते, कितनी बड़ी बात है वो। तो माना उसके ज्ञान को मनन चिंतन करना, अपने मन को शुद्ध करना है, जैसे हम भगवान को मदद कर रहे हैं, अपने आप को संपूर्ण प्योर बनाने का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ है संबंधित भी आज बात थी, कौन सी थी? तुम्हें बार बार देह अभिमानी आत्मवानी बनने का पुरुषार्थ करना है, जीते जी मरने का पुरुषार्थ करना है। काल की मूल्य में भी था जीते जी मरने का। तो स्वयं के ऊपर फोकस रखना है, कौन क्या रहा है, कर रहा है, दिखाई देगा वो, लेकिन अगर हमें अपने स्वयं के पुरुषार्थ पर हमने अपना ध्यान रखा है, तो किसी का भी नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे पर अटैक नहीं करेगा, ना ही उसका चिंतन चलेगा, क्योंकि हम अपने विषयों पर फोकस कर रहे हैं। ऊंची मंजिल है ये, अपनी मंजिल पर हमारा फोकस है, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस है। हम ठीक हो जाएंगे, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। बाबा ने उस दिन कहा ना, ये है ईश्वरीय फैमिली। तो फैमिली है तो हम सभी एक ही फैमिली के हैं ना, एक ही परिवार के हैं। अब सभी उंगलियां तो बराबर हो नहीं सकती हैं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, किसी को चोट लगी है, कोई उंगली कट गई है, अब उसको हम हाथोड़ा नहीं काट देंगे, सब उंगलियों का ट्रीटमेंट करेंगे ना। तो परिवार है हमारा, कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन है तो सिर्फ भगवान के बच्चे हैं। समर्थ है चलने में, सबका अपना अपना है। भगवान दे तो सबको इक्वल रूप से दे रहा है, लेकिन हम उसको ग्रहण अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं, अर्थात उसके ज्ञान के अनुसार हमने अपने जीवन को ढाला नहीं है। अभी उसकी आज्ञाओं का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। वो तो आज्ञाओं पर चलने के लिए ताकत दे रहा है, बताया ना, दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत बढ़ती जाती है। कहां से? इस ज्ञान से। तो इस ज्ञान से स्वयं में ताकत बढ़ती है, मन जैसे डांस करता रहता है, नए नए विचारों का जैसे एक अवतरण होता है मन में, नई एनर्जी आती है। कल का वरदान था, कौन सा वरदान था कल का? ज्ञान डांस क्या है? अभी ये मुरली, अभी कल की, परसों की, किसी भी मुरली में आत्मा घुस जाए वहां जाके, जहां हमने किताबों में अंडरलाइन करके रखा हुआ है, देखो वहां मन को ले जाओ वहां, ये तो ज्ञान डांस है। हाँ, मास्टर ज्ञान सूर्य बने तो उससे क्या होगा? हाँ, जो भी पुराने संस्कारों के कीटाणु हैं, किचड़ा है, वो सब भस्म हो जाएगा। तो अभ्यास किया कल इसका? तो कल शाम को हमने उसी का अभ्यास किया, और ये एक ही संकल्प में मन जैसे एकाग्र हो गया। तो उसकी फीलिंग करनी है कि जैसे ज्ञान सूर्य ऊपर से अवतरित हो गया और यहाँ आके चिपक गया वो, और वो यहाँ से जा ही नहीं रहा, चिपक गया जैसे, छूट ही नहीं रहा, क्योंकि उसको हमने टाइम दे दिया कि हमने एक घंटा या डेढ़ घंटा योग में बैठना है, तो आप एक डेढ़ घंटा इधर ही रहने का, क्योंकि सबसे ज्यादा ओबीडियंट कौन है, बाबा ने खुद कहा ना, तो उसको यहाँ चिपका के रखना है। तो मन इधर उधर भागेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मन की हमने अपने जो उसको क्या कहते हैं कंट्रोल करने के लिए लगाम उसके हाथ में दे दिए, तो वो देख रहा है ना, तो मन की लगाम हमने उसको हाथ में दे दिए, अब वो देख रहा है इस मन में मुझे क्या क्या भरना है, उसको अपने आप पता है, अपने आप वो नए नए विचार, नए 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 यहाँ संकल्प निर्माण होंगे, शक्ति आएगी अंदर में, आत्मा में ताकत बढ़ती जाएगी। यही तो ज्ञान डांस है, क्योंकि ज्ञान सागर से हमारा संबंध हुआ है, उससे हमारा रिश्ता हुआ है, उससे हमने दोस्ती की है, तो दोस्ती की है तो दोस्त, वो दोस्त है कौन है, वो सुप्रीम सोल है, वो हर मर्ज की दवा है उसके पास, मन को ठीक करने के लिए वो मनोरोग चिकित्सक है, क्योंकि रोगी कहां से मनुष्य होता है, मन से होता है ना। तो जो रुग्ण अवस्था हमारी आत्मा, जो रुग्ण अवस्था में पहुंच गई है, उसमें वो खुशी का संचार करता है, नए नए संकल्प भरता है, आत्मा को जैसे पंख मिलते हैं, वो हिम्मत उमंग उत्साह की उड़ान भरती है आत्मा। नहीं तो क्या होता है, योग में बैठे हुए टाइम देखेंगे, जैसे 7:30 हुए पूरा टाइम, माना लगता हल्के हो गया, योग का टाइम पूरा हो गया, और हम बताएं वास्तव में योग का टाइम तो हम देखते हैं 7:30 के बाद तो और ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि आत्मा उसमें डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, और हम उससे तुरंत बाहर निकलने का प्रयास करें तो सिद्ध करता है कहीं ना कहीं हमारे योग में खंडित हो रहा है योग, क्यों हम बार बार उठना चाहते हैं, जबकि हमको इतना सुनहरा मौका मिला हुआ है, भगवान की हम गोद में है, और बार बार उस गोद से उठकर कीचड़ में हमको अपने को, ये है कीचड़ में अपने आप को डाल देते हैं, जाके लथपथ कर देते हैं कीचड़ में, अपना श्रृंगार बिगाड़े जाके, तो ये तो कितना सुनहरा टाइम, गोल्डन चांस मिला हुआ हमको, कितना उपकार है उसका। अगर संसार की तुलना में वायुमंडल देखा जाए, जो दोपहर में कोई बोला ना कि संसार में क्या चल रहा है, हमको खबर ही नहीं उसकी, तो हम ब्राह्मणों को बहुत बड़ा दायित्व है, एक एक संकल्प हमारा बहुत मूल्यवान है, क्योंकि किसने दिया है, एक एक संकल्प बाबा कहते लाखों रुपए का वर्षन जाए, तो उसके लाखों रुपए के वर्षन हमने लिए और उनको व्यर्थ ही गवारे, तो हमारे पर तो और ही बोझ चढ़ता जा रहा है, भगवान के यज्ञ में रह रहे हैं, चल भले हम घर में रह रहे हैं, घर भी एक भगवान का यज्ञ है, भगवान के बन के माना भगवान का यज्ञ है वो, तो उस यज्ञ में रहकर हमारा जीवन जैसे भगवान का, बाबा ने बोला तुम हो ट्रस्टी, आय की मूल्य में था, भले घर में रहो लेकिन ट्रस्टी होके रहो, ये देवी क्या है, अमानत है, कल की मूल्य में था ये, तो हमारा ये तन मन धन संबंध संपर्क मनसा बाचा कर्मणा कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कितना हम टाइम दे रहे हैं उसमें, तो हमारे ऊपर तो उसकी कितनी नजर पड़ी है, तो चिंतन को बढ़ाना है। परसों बाबा के कमरे में बैठे दोपहर के समय, भोजन के बाद बैठना थोड़ा भारी पड़ता है ना, 10-15 मिनट तो ठीक होते हैं, फिर भारी पड़ता है, लेकिन हम फिर बैठने, फिर हमने सोचा कि नींद क्यों आती है भोजन के टाइम, एक तो होता है भोजन का भी ये होता है, लेकिन कई बार बिना भोजन के भी नींद आती, क्यों आती है, क्योंकि हमने संकल्प देहधारियों की बुद्धि में रखे हुए हैं, इसलिए नींद आ रही है, हमने ज्ञान के संकल्प बुद्धि में रखे नहीं है इसलिए नींद आती है, अगर हमने प्राप्तियों की लिस्ट को हमने बुद्धि में रखा ही नहीं है इसलिए नींद आती है, तो ऐसे हम सोचते सोचते 10-12 पॉइंट निकल आए और नींद खत्म हो गई, और पौना घंटा कब निकलेगा पता नहीं चला उसका, और जैसे फ्रेश हो गए एकदम, नींद गायब होगी उस समय, लेकिन थोड़ा सा अगर हम हिम्मत रखकर अगर बैठते हैं तो सचमुच भगवान की मदद हमको नहीं मिले तो किसको मिलेगी, तो हमारे ऊपर तो इतनी कृपा कर रहा है, फिर बाद में ये टाइम भी बीत जाएगा, जिस टाइम के लिए आज संसार तरस रहा है वो हम सबको वो टाइम मिला हुआ है ना, बताया ना, कल मंदा बहन जी बता रहे थे सवेरे क्लास में कि यहां जब भीड़ भाड़ में आते तो पता नहीं चलता है, लेकिन अभी सबको नजदीक से देखा कैसे ज्ञान योग में रुचि से बैठते हैं सभी, और इस ज्ञान योग का संसार के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे यहां इतनी पुरानी पुरानी बहनें आकर नया नया अनुभव लेकर जाती हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। मान लो कोई योग में बैठा भी हुआ है और वो योग में हमेशा आता है, बिल्कुल टाइम से आ रहा है, अंदर से भले उसका योग नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति बहुत ऊंचा दृष्टिकोण बन जाता है, उसके प्रति जो शुभावनाएं निकलेंगी वो बहुत उच्च कोटि की होंगी। क्योंकि एक व्यक्ति है जिसको टाइम है लेकिन योग में नहीं जा रहा है, उसके प्रति शुभावना रखना आसान काम नहीं है, उस बोलना आसान है लेकिन निकलेंगे नहीं, क्योंकि पता है वो तो। लेकिन जो व्यक्ति हमको दिख रहा है कि तो नियमित रूप से अनुशासन से जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसी अनुसार अपने को ढालने का प्रयास कर रहा है, निरंतर आ रहा है, तो उस आत्मा के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होगा बहुत ऊंचा प्योर दृष्टिकोण होगा। पांच पांच मिनट निकाल के कोई योग में बैठ रहा है जाके, वो भी एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रही है सबको आत्मा। ऐसा नहीं है कोई, आज बाबा ने बोला ना, ज्ञान सुनाने का भी सुनाते सुनाते भी मान शान की इच्छा रहती है, ऐसा मुरली में था एक पॉइंट, लेकिन योग में मेहनत सारी। आज जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण आत्मा, जो बाबा का बच्चा युक्ति से पांच पांच मिनट भी चुरा कर योग कर रहा है और उसको सब देख रहे हैं, तो कितना उसके प्रति सबकी शुभ भावनाएं, वो ऊंचा दृष्टिकोण और प्योर दृष्टि पड़ेगी, उसके प्रति नेगेटिव संकल्प ही नहीं चलेगा। जैसे मन में शाप लग जाती है, जैसे योगी आत्मा जा रही है, ज्ञान स्वरूप आत्मा जा रही है, तो दिनचर्या को साधारण नहीं है। आने वाले संडे की मुरली में उदासी का कारण क्या है? अवज्ञाएं, सवेरे से लेकर जो रात तक दिनचर्या बनी हुई है वो अवज्ञाएं ही हमारे उदासी का कारण है। भले बाहर से हमारा फेस स्माइल, जितना हम स्माइल करते रहे एक दूसरे को, आंतरिक संतुष्टता नहीं होगी। आंतरिक संतुष्टता हमारे स्वयं के पुरुषार्थ के बलबूते पर ही, जितना हमने दम लगाया हुआ है वो ही हमको आंतरिक संतुष्टता के बीज पनपने देगी, वो ही दिखेंगे दूसरों को। जो अवज्ञा सारे दिन में कहीं ना कहीं तो होती है बहुत। एक है स्थूल दिनचर्या, एक है सूक्ष्म दिनचर्या। सूक्ष्म, हम इन आंखें, ये आंखें जैसे भगवान को हम दे चुके हुए हैं, तो इन आंखों से क्या क्या देख रहे हैं, इस मुख से हम हमारे कौन कौन से बोल निकल रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं जो तुम्हारा सुनाया हुआ ही सुनाऊं, तो कौन क्या क्या सुना रहे हैं हम। अगर लंबे समय से ज्ञान में चलने के बाद भी अभी हमारे मुख से कोई गाली निकल जाती है तो क्या कहेंगे उसको, जो वातावरण को सारा खराब कर देती है। और भगवान ने हम सबको वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए यहां एकत्रित किया हुआ है, चाहे घर में या कहीं भी है, हमारा दायित्व तो वातावरण को शक्तिशाली करना, जो आत्माएं शक्तिहीन है उनमें शक्तियों के पंख लगाना, शक्तियों का खून भरना उनमें, शक्तियों का इंजेक्शन लगाना, शक्तियों की दृष्टि देना उनमें, शक्तियों का जैसे उनको वरदान देना, शक्तियों से जैसे उनकी पालना करना, शक्तिशाली बोल से जैसे उनको एक नया उमंग उत्साह भर देना उनमें, तो कितना हमें अपने ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है। लेकिन हमारा चिंतन कहीं ना कहीं दूसरी बातों में चला जाता है, तो हम स्टेज पर हैं। आज मुरली में बताया ना बाबा ने, तुम हो एक्टर्स, इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो, तो हम एक्टर्स हैं, विश्व की स्टेज पर है एक्टर, कदम कदम उसकी एक्टिंग कैसी होती है, क्योंकि वो उसको पता होता है कि मेरी फिल्म फ्लॉप ना हो जाए कहीं, तो हमारी तो 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग चल रही है, और इसमें तो स्वयं डायरेक्टर स्वयं भगवान है हमारे साथ में, उसके डायरेक्शन पर चलना है अपने को तो, और मदद भी उसके साथ में है, जहां मिस्टेक होगी वहां हमको इशारा करेगा वो। अगर हमें अपने मन में अपने प्रति कुछ करने का अपने मानस बनाया है तो कदम कदम पर वो मदद करने के लिए बंधा हुआ है, तो बाबा की कितनी हमारे पर कृपा है। तो मुरली का एक एक पॉइंट जो है ना, आत्मा को जैसे डांस करने के लिए बाध्य कर देता है, और डांस करने से क्या होता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, गीत मन में अपने आप बजने लगते हैं, है ना, जैसे गुजराती गरबा आता है तो जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा ना वो भी डांस करने लगता है। तो भगवान की मुरली भी ऐसी है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित मन भी डांस करने लग पड़ता है। ऐसे वैसे कोई भी विचारों वाली आत्मा हो, जैसे मुरली की तान शुरू होती है तो मन डांस करना, लेकिन यह है कि रेगुलर करना पड़ेगा। कोई भी बीमारी का उपचार करने के लिए दवाई लंबे समय तक खानी पड़ती है, अगर बीमारी क्रॉनिक हो तो। बीमारी क्रॉनिक है और दवाई तो डॉक्टर ने दे दी है लेकिन बांध के हमने रख दी किनारे। तो आत्मा लंबे समय से बीमार है, दवाई भगवान दे रहा है, इंजेक्शन भी लगा रहा है मन मनोभव का, मध्य जीव का, कई प्रकार के मंत्र भी दे रहा है, झाड़ फूक भी कर रहा है हमारी, लेकिन हम सब भूल गए हैं, दवाई नहीं खा रहे तो कैसे होगा फिर। तो मुरली को ना चबाना है ये, और ये आदत सहज नहीं पड़ती है, अभ्यास 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 अभ्यास। और क्या कहा आज की मुरली में, क्या कहा आज, अभी आप सुनाओ एक एक पॉइंट। हाँ, आकाश आसन छोड़ दिया, सवेरे छोड़ दिया। हाँ, इस पर हमको एक भाई ने आज बात बताई। एक बार बाबा ने कहा बच्ची ये गीत बजाओ, क्योंकि शुरू शुरू में जब मुरलियाँ चलती थी तो बाबा कहते थे बच्ची गीत बजाओ, तो बाबा ने कहा बच्ची गीत बजाओ, छोड़ दिया काशी आशी धरती पर आज ने, तो बच्ची ने गीत बजा दिया। अच्छा, जब मुरली चलने लगी तो बाबा ने कहा बच्ची को अकल भी नहीं है, कौन सा गीत लगा दिया ये, छोड़ दिया आकाश आशी धरती पर आज ने। तो बच्ची को बोल दिया, बच्ची को थोड़ा लग गया खराब कि बाबा ने तो खुद कहा ही, तो वो रूठ के चली गई। ये आज हमको किसी भाई ने सुनाया, तो वो उठ के चली गई कि बाबा ने खुद कहा और खुद ही बाबा बिगड़ गए। तो फिर वो उसको पूछा दीदी ने या किसी बड़ी दादी ने कि क्या हुआ, बोला बाबा ने खुद कहा कि ये गीत लगाओ बच्ची छोड़ दिया आकाश से आसने धरती पर आ जा रहे, और बाद में खुद ही बोल रहे क्यों लगाया, बच्ची को अकल भी नहीं है। तो उनको समझाया जो पहले बोला था ना वो ब्रह्मा बाबा था, और जो बाद में है ना वो शिव बाबा था। तो ये सुनको थोड़ी उनको आदत मिली। कमरे से, अच्छा हाँ, बाबा के कमरे में बाबा ने बच्ची को बोला कि बच्ची आज ये गीत बजाना। हाँ, बजा दिया गीत। हाँ, ये गीत क्यों बजाया इधर। हाँ, ये गीत क्यों बजाया। हाँ, बोला कि ये बूढ़ा क्यों बोल रहा है, पहले तो बोला था कि ये गीत बजाओ, अब ये बूढ़ा क्यों बोल रहा है कि गीत नहीं बजा। तो बोला है पहले ब्रह्मा बाबा था, शिव बाबा आ गया इसमें, तो ये छोड़ दिया। और कल कौन सा गीत था, दर पे आए हैं, कैसे आए हैं, कसम लेके। तो कौन सी कसम लिया हमने, कुछ भी हो जाए सिर पर कफन बांध लिया है, पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे साथ चलेंगे। तो बाबा के ऐसे अनेक सारे पॉइंट होते हैं, मन को डांस करना है, योग का डांस करना, ये था आज ज्ञान का डांस, फिर योग का डांस करना है, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, अपने मन बुद्धि को बिजी रखना है, इससे वातावरण का निर्माण होता है। बताया था ना पहले भी कि हमारे से 24 आवर आत्मा से वाइब्रेशन निरंतर निकलते ही रहते हैं जिन संकल्पों में हम विचरण करते हैं। तो ऐसे हमेशा हमको ज्ञान डांस करते रहना है। ओके, ओम शांति।